أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ اس انداز میں تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو یہ جو دعوت دی توحید کی اور ہدایت کی راہ پر جو دعوت دی اس کے مقابل میں جو ان کے چچا آزر تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مُلِيَا کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم یہاں سے دور چلے جاؤ. اب اس کے جواب میں حضرت ابراہیم جو فرما رہے ہیں وہ یہ آیت ہے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ. آزر نے کہا تھا کہ یہاں سے دور چلے جاؤ یا میں تمہیں سنگسار کر دوں گا لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِ مُلِيَا, اور جواب میں حضرت ابراہیم کیا فرما رہے ہیں قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ کہ آپ پر سلام ہو. تو یہاں پر سلام سے کیا مراد ہے؟ یہ پہلی ہماری گفتگو ہے. دو احتمال دیے گئے کہ سلام سے کیا مراد ہے. پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ سلام خدا حافظی والا سلام, یعنی انسان جب کسی سے خدا حافظی کرتا ہے اور کسی سے جدائی کرتا ہے تو جاتے وقت کہتے ہیں سلام, آپ پر سلام ہو, یہ کہہ کر چلا جاتا ہے. تو یہاں سے حضرت ابراہیم نے ہجرت کرنا شروع کر دی. یہ آخری بات تھی جو اپنے چچا آزر سے کی, اور اس کے مقابلے میں کہا کہ میں اب یہاں سے ہجرت کر کے جا رہا ہوں. اس احتمال کو علامہ طباطبائی نے قبول نہیں فرمایا, کہ علامہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے اس موقع پر ہجرت نہیں کی. یہ آخری گفتگو تھی ضرور آزر سے, لیکن اس قوم سے آخری گفتگو نہیں تھی. قوم میں ابھی بھی حضرت ابراہیم موجود رہے, انہیں ہدایت اور ان کی رہنمائی کرتے رہے. ہجرت بعد میں جا کر کی, جو عراق سے ہجرت کی شام کی طرف, وہ بعد میں جا کر کی, اس موقع پر نہیں کی. اس وجہ سے یہ احتمال دینا کہ یہ سلام سلام جدائی والا سلام تھا, خدا حافظی جب انسان کرتا ہے تو سلام کے ذریعے سے کرتا ہے, یہ وہ سلام نہیں ہے. یہ ہو گیا پہلا احتمال جس کو رد کیا, اور آگے علامہ طباطبائی کے ساتھ آگے جوادی عملی صاحب نے بھی اس احتمال کو قبول نہیں فرمایا. دوسرا احتمال یہ ہے کہ پروردگار متعال نے مومنوں کی ایک پالیسی بیان کی ہے, صاحبان ایمان صاحبان تقویٰ کی پالیسی یہ بیان کی ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کہ جب جاہل اور جہلا ان سے ہم کلام ہوتے ہیں تو یہ سلام کرتے ہیں. سلام سے مراد قول سے, آگے جوادی عامی صاحب فرماتے ہیں قول سے مراد کہنا نہیں ہے, یعنی قالا عام ہے, صرف کہنے کے معنوں میں نہیں آتا, بلکہ جو ان کی روش ہوتی ہے, جو ان کا طریقہ کار ہوتا ہے, جو ان کی منطق ہوتی ہے, اس جاہلانہ خطاب کے مقابلے میں جو ان کا رد عمل ہوتا ہے وہ جاہلانہ نہیں ہوتا, وہ سلامت والا ہوتا ہے, وہ سلامتی والا ہوتا ہے, اس میں کوئی جاہلیت کی بو نہیں آتی. حضرت ابراہیم نے چار بار کہا یا ابتی, آپ نے دیکھا چار بار اس طرح فرمایا, اور یہ بھی کہا انی اخاف ان یمسس کا عذاب, بالکل یعنی اپنا آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے حضرت ابراہیم نے انہیں اس چیز کی طرف بلایا کہ آئیے اس دین کو قبول کر لیجئے. اس کے مقابل میں آزر نے جو رویہ اپنایا وہ جاہلانہ رویہ تھا, دلیل کے مقابل میں دلیل نہیں لائے, برہان کے مقابل میں برہان نہیں لائے, استدلال کے مقابل میں استدلال نہیں لائے, بلکہ دلیل کے مقابلہ کس چیز سے کیا؟ دھمکی سے کیا. دلیل کا مقابلہ کس چیز سے کیا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا. دلیل کا مقابلہ کس چیز سے کیا؟ یہاں سے چلے جاؤ, وَحْجُرْنِ مَلِيَا, جیسا ملک بدر ہوتا ہے ہمارے یہاں اس طرح کا ہے, یہاں سے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ. اب اس جاہلانہ رویے کے مقابل میں حضرت ابراہیم نے جو رویہ اپنایا وہ سلامتی والا اپنایا, یعنی جو ان کا اس منطق کے مقابلے جو ان کی منطق تھی وہ سلامتی والی تھی. یہ مراد ہے سلام سے, یہ جو فرمایا قال سلام علیکا تو اس سے یہ مراد ہے. یعنی ایک پالیسی ہے, اور وہ یہ کہ ہے وہ یہ کہ وہ یدرعون بالحسنت سیئہ, کہ یہ جو افراد ہیں صاحبان ایمان صاحبان تقویٰ صاحبان بصیرت, یہ حسنہ کے ذریعے سے سیاحت کو دور کر دیتے ہیں. اگر حضرت ابراہیم بھی ان کے مقابل میں اس انداز میں آ جاتے تو ایک دشمنی کھڑی ہو جاتی, ایک محاذ کھڑا ہو جاتا, جس کی وجہ سے جو ان کا مقصد تھا اور جو ان کا ہدف تھا کہ لوگوں کو ہدایت کی راہ پر لے آنا, یہ سارا ہدف خراب ہو جاتا اور دشمنی ہو جاتی. حضرت ابراہیم نہیں چاہتے تھے دشمنی کریں, دشمنی کے نتیجے میں وہ انہیں نقصان پہنچائیں گے, उनके हदफ को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके मकतब को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके मकसद को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे बचने के लिए, यानी इन नुकसान से बचने के लिए कि अभी एक नया महाज ना खड़ा हो, अभी मेरा काम हिदायत करना है लोगों को, अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो फिर मेरा ये मकसद पर आँच आएगी और हर्फ आएगा। इस वजह से हज़रत इब्राहिम ने कहा काला सलामुन अलैका, कि ठीक है आपने अपनी बात कर दी, मेरी तरफ से जो रवैया रहेगा वो सलामती का रवैया रहेगा, मैं ना धमकी दूंगा ना ये कहूंगा कि आप यहाँ से चले जाएँ, वाह जुड़नी मलिया, इस किस्म की कोई बात मैं नहीं करूँगा। उसके बाद हज़रत इब्राहिम ने फरमाया सा अस्तग़फिरु लका रब्बी, कि मैं अनकरीब आपके लिए इस्तग़फ़ार करूँगा अपने रब से। कि यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ दोबारा हज़रत इब्राहिम का रवैया एक नर्म रवैया है, जिस तरह परवरदिगार ने भी कहा हज़रत मूसा और हारून को कि इज़हबा इला फ़िरऔना वक़ूल लहू क़ौलन लय्यना, एक लय्यन और नर्म गुफ्तगू करें। दोबारा हज़रत इब्राहिम का रवैया नर्म है और कह रहे हैं मैं इस्तग़फ़ार करूँगा आपके लिए, ताकि दोबारा उनके दिल में और उनके कल्ब में, आज़र के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग जाए। और अभी भी मायूस नहीं हुए हज़रत इब्राहिम, ये सबसे बड़ी उनकी बात थी, इतना कुछ होने के बावजूद भी मायूस नहीं हुए आज़र की हिदायत से, अभी भी उन्हें एक ये बात थी कि शायद ये हिदायत याफ्ता हो जाए, इसलिए दोबारा एक नर्म अंदाज से गुफ्तगू की। और यहाँ पर आप देखते हैं कि परवरदिगार का एक वाज़े बयान है, मा काना लिन्नबी वल्लदीन आमनु अन यस्तग़फिरु लिल्मुशरिकीन, के नबी को इबारत देखें माकान है, यानी ये सजावार नहीं है, ये हो नहीं सकता कि नबी और वो अफराद जो साहिबान ईमान थे वो इस्तग़फ़ार करें उन लोगों के लिए जो मुशरिकीन हैं। बस यहाँ हज़रत इब्राहिम जो इस्तग़फ़ार कर रहे हैं ये इस परवरदिगार के इस बयान से पहले की बात है, जब तक परवरदिगार मुताल की जानिब से ये बात नहीं आई थी उससे पहले पहले की ये बात है कि हज़रत इब्राहिम ने कहा कि मैं आपके लिए इस्तग़फ़ार करूँगा। लेकिन जब ये बयान आ गया परवरदिगार की जानिब से कि नबी को और नबी के जो सात अफराद हैं साहिबान ईमान हैं साहिबान तकवा हैं उन्हें जेब नहीं देता, उनके लिए सजावार नहीं है कि वो मुशरिकीन के हक़ में दुआ करें इस्तग़फ़ार करें, तो यहाँ पर फिर हज़रत इब्राहिम ने कह दिया तबर्रा मिन्हु, आज़र से हाथ उठा लिए और उनसे दूरी इख्तियार कर ली। यहाँ से आगे जवादी आमनी साहब फरमाते हैं कि वाज़े तौर पर फ़र्क समझ में आ जाता है कि आज़र हज़रत इब्राहिम के वालिद नहीं थे, क्योंकि हज़रत इब्राहिम उनके लिए दुआ की सास्तग़फिरुल्लाह का रब्बी, परवरदिगार की जानिब से बयान आ गया कि नबी को जेब नहीं देता, साहिबान ईमान को ये जेब नहीं देता कि वो मुशरिकीन के लिए इस्तग़फ़ार करें। इस बयानी के बाद हज़रत इब्राहिम ने तबर्रा मिन्हु आज़र से बरात कर ली, दूरी इख्तियार कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी ये दुआ फरमाते रहे रब्बिक फिरली वली वालिदैया, कि परवरदिगार मुझे और मेरे वालिदैन को माफ़ फरमा, उनकी मगफ़िरत फरमा। तो अगर आज़र वालिद होते हैं तो कभी ये दुआ ना करते हैं, सिर्फ ये कहते हैं रब्बिक फिरली, या ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं मेरी वालदा के लिए, वली वालिदती कहते हैं। लेकिन ये जो दुआ फरमा रहे हैं रब्बिक फिरली वली वालिदैया, ये दुआ बता रही कि आज़र वालिद नहीं थे, वालिद और वालदा के लिए हज़रत इब्राहिम आखिर उम्र तक दुआ करते रहे। आज़र के लिए सिर्फ एक वक्त कहा था कि मैं तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करूँगा, लेकिन जैसे ही खुदा ने कह दिया वमा कान अलिन्नबी वल्लदीन आमनु अन यस्तग़फिरु लिल्मुशरिकीन, के ज़ेब नहीं देता इस्तग़फ़ार करना, तो छोड़ दिया। तो इसका मतलब वाज़े तौर पर कुरान ये इस चीज़ की जानिब हमारी रहनुमाई कर रहा है कि आज़र इब्राहिम के वालिद नहीं थे। इन्नहु काना बिहफिया, अच्छा यहाँ पर एक और बहस की अलावा जवादी आमली साहब ने कि क्या इंसान मुशरिकीन के लिए दुआ कर सकता है या नहीं कर सकता, तो कहा अगर ये दुआ कि वो उनके मरने के बाद दुआ करे कि परवरदिगार, एक जैसे होता है कोई आज के दौर में होता है कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी होती है जो मुशरिक है लेकिन इंसान को पसंद है वो सेलिब्रिटी, किसी भी चाहे उसका खेल के मैदान से ताल्लुक़ हो या किसी और मैदान से उसका ताल्लुक़ हो, तो उसके लिए वो दुआ करता है, तो ये दुआ उसके हक़ में फ़ायदेमंद है मुफीद है या नहीं, ये दुआ उसको फ़ायदा पहुँचाएगी या नहीं पहुँचाएगी। कहा कुरान की वाज़ आयत है कि परवरदिगार फरमाते हैं इन तस्तग़फिर लहुम सबईना मर्रा फलन यग़फिर अल्लाह लहुम, अगर आप 70 बार भी उनके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे तो परवरदिगार उनको माफ़ नहीं करेगा। तो एक मुशरिक के मरने के बाद कि परवरदिगार उसको माफ़ कर दे और उसे जन्नत में डाल दे, ये दुआ किसी भी मुशरिक के हक़ में फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन मरने से पहले अगर इंसान दुआ करता है कि परवरदिगार इसे रास्त पर ले आ, इसे हिदायत की जानिब ले आ, इसे नूर की जानिब ले आ, इसे ज़ुलुमात से निकाल दे, तो ये दुआ मुशरिकीन के हक़ में फ़ायदेमंद भी है। जैसा कि जंग अहद के मौके पर जब हज़रत जिब्राइल ने पैगंबर से फरमाया कि आप नफरीन करें इस कौम पर, बददुआ करें, तो पैगंबर ने फरमाया मैं इसलिए मबूस नहीं हुआ हूँ कि मैं नफरीन करूँ और मैं बददुआ करूँ, वइन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं रहमत बनकर मबूस हुआ हूँ, मैं इनके हक़ में दुआ करूँगा। और पैगंबर ने दुआ की, लेकिन मरने के बाद नहीं, मरने से पहले दुआ की। तो साहिबान ईमान, साहिबान ईमान जो साहिबान तकवा, मुशरिकीन के लिए दुआ कर सकते हैं लेकिन मरने से पहले। और आखिरी जो आयत का हिस्सा है वो ये है कि इन्नहु काना बी हफ़िया, के मेरा परवरदिगार मेरे लिए हफ़ी है। हफ़ी कहते हैं उस मेहरबान को जो मोहताज की छोटी छोटी और दकीक तरीन एहतियाज को और परेशानियों को दूर कर दें, छोटी छोटी चीज़ें, रीज़ रीज़ बातों को भी, ऐसा मेहरबान जो छोटी छोटी चीज़ों को भी देख रहा है और उनकी वो भी चीज़ें पूरी कर रहा है। तो हज़रत इब्राहिम कह रहे हैं मेरा परवरदिगार ऐसा है। और यहाँ पर फिर अल्लामा जवाद अमीन साहब फरमाते एक बुरहान कायम कर रहे हैं हज़रत इब्राहिम, वो इस अंदाज़ में कि इससे पहले कह चुके थे आज़र को कि तुम जिसकी पैरवी कर रहे हो, जिसको तुमने अपना माबूद बना लिया, ना वो सुन सकते हैं, ना वो देख सकते हैं, ना वो तुम्हारे किसी काम आ सकते हैं। और यहाँ पर फिर एक अपनी कौम को और आज़र को ये पैगाम दे रहे हैं कि मेरा परवरदिगार तो हफ़ी है, वो तो मेरी छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखता है, लेकिन तुम लोग क्या करोगे? तुम जिसकी इबादत करते हो वो तो ना तुम्हारी बात सुन सकता है, ना तुम्हें जवाब दे सकता है, ना तुम्हारी तुम्हें देख सकता है, ना तुम्हारे किसी काम आ सकता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिर।